परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो संदेश है उसका नाम है याकूब का ख्वाब, याकूब का स्वप्न। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 28 चैप्टर 10 से 22 वचन पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति का 28 10 से 22 पढ़ेंगे हम। सो याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारन की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के इकनों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषें पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेथल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मांगी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करें और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब का अर्थ है धोखेबाज। याकूब का पिता इसहाक और इसहाक का पिता अब्राहम था। याकूब का पिता इसहाक और इसहाक का पिता अब्राहम। इज़ाक के दो बेटे थे, जुड़वे बेटे। पहले बेटे का नाम ईसु और दूसरे का याकूब। सबसे पहले याकूब ने ईसु से फरेब करकर उसके जो जायदाद है, उसका जो हकदार है, वह ईसु से छीन लिया। क्योंकि सबसे पहले जो पैदा होता है परिवार में, उसी का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी कारोबार है, उसी का हुआ करता था। एक दिन याकूब ने कुछ खाना बनाया और ईसु जो था उसका बड़ा भाई, उसका भाई, जुड़वा भाई, वो थक कर भूखा घर आया और उसने याकूब से कहा कि जल्दी से, मैं भूखा हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाना दे दो। याकूब ने उसे कहा, पहले तुम मेरे लिए आपका जो हक बनता है, प्रॉपर्टी का वारिस होने का हक जो बनता है, वो मुझे वो दे दो, फिर मैं आपको ये खाना दूंगा। यीशु जो था वो काफ़ी भूखा था और ये भूख की वजह से उन्होंने जो याकूब ने मांगा वो उसे दे दिया। दूसरी बार याकूब ने फिर से धोखे से जो भी बरकतें, जो भी आशीषें जो इज़ाक जो पिता था, वो जो इज़ाक जो बरकतें हैं, जो आशीषें हैं, वो इज़ाक यीशु को जो देने वाला, वही सारे बरकतें, वही सारे आशीषें धोखे से याकूब ने ले ली। क्या किया उन्होंने? याकूब ने अपने हाथों को बकरी के चमड़े पर ढाका और धोखे से जो आशीष जो यीशु के थे वे उन्होंने धोखे से ले ली। और दो बार धोखा खाने से यीशु जो था बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा आया उनको, और इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने भाई याकूब को मारने की सोच ली, ख़त्म करने के लिए, जान से मार दूंगा, ये उन्होंने तय कर लिया। अब याकूब जो है अपने भाई के डर के वजह से वो हारन की तरफ चला जा रहा है, दौड़कर जा रहा है, अपने भाई के डर की वजह से उनसे भाग रहा है। ये जो कहानी है ये 10वें वचन से शुरू होती है। अब याकूब जो है वो अपने भाई के डर से भाग रहा है हारन की तरफ। हारन एक जगह है, हारन की तरफ याकूब जो है वो भाग रहा है। सो याकूब बर्शेबा से निकलकर हारन की ओर चला, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, ना उसके पास पानी है पीने के लिए, ना खाना है, थका हुआ है। और दौड़ते चलते रात हो जाती है, ग्यारहवें वचन में, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। इस रेगिस्तान में कुछ नहीं है सिवाय पत्थर। खतरनाक जानवर हैं, बिच्छू हैं, पीने के लिए पानी नहीं, खाना नहीं। और याकूब ने क्या किया, उसमें से एक पत्थर उठाकर उन्होंने उसको तकिया बनाया। और यहाँ लिखा तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। क्या आपने कभी पत्थर पर अपना सर रखकर सोने की कोशिश की है? काफी दर्द होगा। अक्सर हम अपनी जो ताकत है, खुद की ताकत पर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं, हम उस पर ज्यादा निर्भर होते हैं, अपनी अकलमंद अकल पर हम ज्यादा निर्भर होते हैं। जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी मुश्किलें, उसका हल हम अपनी ताकत हल करने के लिए अपनी ताकत पर हम भरोसा रखते हैं, अपनी अकल पर भरोसा रखते हैं। पर परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसी मुश्किलें, ऐसी परेशानियाँ वो हमारी जिंदगी में लेकर आता है और उस परेशानी या उस तकलीफों का कोई सलूशन नहीं है, कोई उसका हल नहीं है। जब ऐसी परिस्थितियों में हम आते हैं तब हमें रुकना पड़ता है। जिस तरह से याकूब अपनी परेशानी से भाग रहा है, उसे उस शाम में रुकना पड़ा, और उसी तरह से हमें भी रुकना पड़ता है। बारहवें वचन में हम पढ़ते हैं, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। यहां याकूब ख्वाब देख रहा है, स्वप्न देख रहा है, और उस स्वप्न में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक पहुंची है और परमेश्वर के दूत फरिश्ते जो है उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तेरहवें वचन में, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। यहां परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वो अपना जो पहचान इंट्रोडक्शन याकूब को करता है। गौर कीजिएगा कि किस तरह से जो हमारा परमेश्वर है वो अपनी पहचान याकूब को कराता है। वो कहता है मैं यहोवा हूं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। वो ये सीधा नहीं कहता कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, वो कहता है कि मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर हूँ और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। याकूब को परमेश्वर के बारे में जाहिर सी बात है कि उनके पिता से मालूम होगा, इसहाक से पता होगा और इब्राहिम से भी पता होगा, पर अपनी जिंदगी के दौरान उन्होंने परमेश्वर को वो भूल गया। यहाँ जो परमेश्वर है वो याकूब से 6 वादे करता है। पहला वादा, जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, उसमें से एक वादा है। और ये भी कहता है कि जिस भूमि पर तू खड़ा है वह आपको दूंगा और तेरे वंश को भी दूंगा। यहाँ याकूब जो रेगिस्तान में है, इस परिस्थिति में है अब कि यहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके सिर के नीचे रखने के लिए तकिया भी नहीं है और यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हें वादा करता है कि ये जो जमीन है जिस पर याकूब सो रहा है, ये जमीन भी याकूब को देगा और उसके वंश को भी ये जमीन देगा। दूसरा जो वादा है, और तेरा वंश भूमि की धूल के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। तीसरा वादा, और तेरे वंश का के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और चौथा वादा, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। और आखिर में ये वादा भी करता है कि मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। ये वादे जब याकूब ने सुने तब वो जाग उठा, वो जाग उठा और कांपने लगा, वो डरने लगा। अक्सर हमें परमेश्वर की उपस्थिति का ख्याल या ज्ञान नहीं होता, जबकि परमेश्वर सभी जगह है। अक्सर हमें उसका हम नहीं सोचते कि परमेश्वर इस स्थान में मौजूद है। यहाँ याकूब डर रहा है और ये भी कहता है 17वें वचन में, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। अठारहवें आयत में, भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। यहाँ याकूब जो है वो पत्थर उठाकर उसका खंभा खड़ा कर दिया, यानी कि जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसे बातें की, उसी स्थान को याकूब एक कलीसिया या परमेश्वर का भवन कहता है, भवन जो परमेश्वर का है, जिस भवन में परमेश्वर रहता है उस स्थान को परमेश्वर का भवन कहता है, यानी कि कलीसिया जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। उन्नीस आयत में, और उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। बेतल यानी परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की कलीसिया। यहाँ हम आगे देखते हैं याकूब जो है परमेश्वर के सामने वादे करता है, 20 से 22। और याकूब ने यह मन्नत मांगी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम में लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहराएगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये वादे हैं जो याकूब ने, मन्नत जो है वो याकूब ने मन्नत मानी, और इसके बाद में वो हारन की तरफ चला गया। इस रात के बाद 20 साल के उपरांत जब परमेश्वर याकूब को ख्वाब में मिलता है और कहता है, इस ख्वाब के 20 साल बाद, और 20 साल के दौरान परमेश्वर उन्हें आशीषें देता रहता है, बरकतें देता रहता है। इस 20 साल के दौरान जो परमेश्वर ने वादे किए हैं वो वादे परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन जो याकूब ने ये मन्नत मांगी है, जो याकूब ने जो वादे किए हैं वो याकूब भूल गया। वो बेतल में दोबारा नहीं आता, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह चला जाता है, और इस दौरान उसकी जिंदगी में परेशानी, ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्योतिषवा चैप्टर में इसके बारे में लिखा है। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश के लड़कियों से भेंट करने को निकली, तब उस देश के प्रधान हिवी हेमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसकी भ्रष्ट कर डाला, उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से अलग से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। यहाँ हम देखते हैं कि याकूब की बेटी जो है उसका जीवन बर्बाद किया है, और जो उसके भाई है वो अपनी जो बहन का जो बुरा जिस किसी ने किया है उसका बदला लेते हैं। तब जाकर उत्पत्ति 35 याकूब को अपने वादे याद आते हैं। 35:1-3 तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कुछ करके बेतल को जा और वहीं रहे, और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना जिसने मुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई ईसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में से जो पराये देवते हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ, हम यहाँ से कुछ करके बेतल हो जाए को जाए, वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊँगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा, उसमें मेरे संग रहा। यहाँ याकूब अपने वादे को याद करता है और जो वादे उन्होंने नहीं पूरे किए परमेश्वर से जो किए थे वो पूरा करने को जा रहा है। लेकिन इस दौरान इतने सालों के दौरान परमेश्वर वफादार रहा। हम भी याकूब की तरह अपने जो समस्याएं हैं जो परेशानी है उससे हम दूर भागना चाहते हैं, लेकिन जो परेशानियां हैं जो दुख हैं वो कम नहीं होते लेकिन बढ़ते जाते हैं। और जिस तरह से याकूब को रुकना पड़ा उस रात को हमें भी एक दिन रुकना पड़ता है। परमेश्वर ऐसे परिस्थितियां बनाता है जब हम आगे नहीं जा सकते वहां हमें रुकना पड़ता है, और परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमें क्या करना है। परमेश्वर याद दिलाता है कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे भूल गए हैं, लौटाओ लौटाओ मेरे पास और मैं आपको आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि आपकी जिंदगी अच्छी बन जाए। उसी तरह से आज का यही संदेश है कि हम परेशानियों से दुख से तकलीफों से हमें भागना नहीं चाहिए। दुख और तकलीफ को लेकर हम परमेश्वर के सामने हमें खड़ा रहना है, क्योंकि जो तकलीफें हैं जो दुख हैं उसका हल और उसका जवाब सिर्फ
परमेश्वर के पास है। तो हमें इन परेशानियों से न भागकर हमें परमेश्वर के उपस्थिति में हमें आना है, परमेश्वर को याद हमें करना है, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमें हमें याद करना है, परमेश्वर जो कर सकता है और परमेश्वर पर विश्वास हमें लेकर आना है। परमेश्वर को हमें कहना है कि इस समस्या का हल और जो भी हमने हम भूल गए हैं वो हमें याद करके, जो भी गुनाह है, जो भी हमने जो ज़िंदगी अपनी मर्जी से जो जी है उसे मोड़कर हम परमेश्वर की तरफ हम मुड़े, परमेश्वर की तरफ हम आँख लगाए हैं, परमेश्वर को हम अपना परमेश्वर माने और विश्वास से हम माने कि जो समस्या है, जो परेशानियां हैं वो परमेश्वर उसका हल निकालेगा। जिस तरह से याकूब को परमेश्वर ने आशीष दी है, उसी तरह से ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। तो हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, उससे हम भागना चाहते हैं, लेकिन आप हमसे प्यार करते हैं और इसीलिए ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थितियां आप बनाते हैं। उस परिस्थितियों में हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमें रुकना पड़ता है। तो आज हम रुक गए हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, और हम अपनी परेशानियाँ जो है, समस्याएं जो है, दुख है, आपके चरणों में रखते हैं और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप ही हैं जो हमें उस डर से आप हमें मुक्त करें, परेशानियों से मुक्त करें, दुख से मुक्त करें। और जिस तरह से याकूब को आपने आशीष दी है उसी तरह से हमें भी आप आशीष दे दीजिए परमेश्वर। और जो भी आपको जो वचन कहता है उसके अनुसार हमें मदद कीजिए कि हम भी आपके वचन के अनुसार जिंदगी बिताएं। जो आप कहते हैं वो हम करें, इसके लिए आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर, ताकत दीजिए परमेश्वर, विश्वास बढ़ाएं परमेश्वर। परमेश्वर आप धन्य हैं, हमें विश्वास में और आगे बढ़ाएं, आपके पीछे चलने के लिए मदद कीजिए। महिमा स्तुति आपकी, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन।